نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشفى ومن دعوة لا يستجاب لها آمين يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب اور وصیت کی اسی کی ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے کس کی وصیت کی بیہا ہا کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے وصیت کی اس کی کس بات کی یہ جو پیچھے گزری ہے کیا بات گزری ہے کہ جب اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا تھا اسلم اسلام لے آؤ فرما بردار ہو جاؤ تو انہوں نے کہا تھا میں فرما بردار ہو گیا رب العالمین کے لیے تو اس کا مطلب کس چیز کی وصیت کی تھی انہوں نے اسلام کی ٹھیک ہے فرما بردار ہونے کی وصیت کی انہوں نے اپنے بچوں کو اور کس نے کی یعقوب علیہ السلام نے بھی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کون تھے اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس ان دونوں کے علاوہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے اور بھی بیٹے تھے تقریباً ان کے یہ کہا جاتا ہے کہ 8 بیٹے تھے تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے لیکن ان میں سے پھر کوئی پیغمبر نہیں ہوا مگر یہ دونوں بیٹے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام یہ دونوں پیغمبر تھے اور ابراہیم علیہ السلام کے یہ پوتے ہیں یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں تو انہوں نے بھی اپنے بچوں کو یہی نصیحت کی اور کیا فرماتے تھے یا بنی یا اے میرے بیٹو ان اللہ اصطفا بے شک اللہ تعالی نے چن لیا ہے کیا چن لیا ہے لکم لیے تمہارے کس چیز کو چن لیا ہے الدین دین کو تمہارے لیے اللہ تعالی نے دین کو خود چوز کیا ہے سبحان اللہ یہ کتنی بڑی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ خود چوز کریں کسی کے لیے دین کو اور وہ الدین کیا ہے اسلام اس لیے کہ آگے فرمایا فلا تموتن الا وانتم مسلمون اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو یعنی اس کے علاوہ کسی اور حالت میں تمہیں موت نہیں آنی چاہیے مسلمان ہی کی حالت میں تمہارا آخری وقت بھی ہو اور تم دنیا سے جاؤ کیسی نصیحت ہے نا ایک باپ کی اپنے بیٹوں کو اب آپ دیکھیں اس میں پہلی تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو تمہارے لیے پسند کیا اللہ تعالیٰ نے چوز کیا کیوں اس لیے کہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام اللہ کے نزدیک جو دین ہے نا وہ صرف اسلام ہی ہے That's it. اب وہ پتہ ہے جو پہلے پیغمبر بھی گزرے ہیں وہ سب اپنے اپنے وقت میں اسلام ہی کی دعوت دیتے رہے لوگوں کو یہ الگ بات ہے کہ یعنی لوگوں نے بعد میں نام ڈفرینٹ رکھ لیے فرقے بنا لیے اپنے الگ الگ ان کے نام یہ دیے لیکن جو تبلیغ تھی نا ان کی وہ ایک ہی دین کی تھی اور وہ دین اسلام ہے یعنی میسج سیم ہی تھا اب ایسے ہی ہے سمجھ لیں کہ پیغمبر تو ڈفرنٹ ڈفرنٹ آئے جیسے آپ کے پاس دنیا کی ایک مثال سے آپ کو سمجھاتی ہوں کہ جیسے آپ کے پاس ڈاکیا آتا ہے میل مین آتا ہے ٹھیک ہے ایک وہ پہلے پرانے زمانے میں کیا ہوتے تھے کہ ایک جگہ سے چلتا تھا کوئی میل لے کے اور کیونکہ بہت دور جانا ہوتا تھا تو وہ آگے میل ایک مثلاً مثال کے طور پہ وہ 50 میل گیا 50 مائلز گیا وہاں پہ جا کے ایک اور بندے کو اس نے ہاتھ میں وہ میل دی وہ پھر بندہ وہ آگے بھاگا اپنے گھوڑے پہ اس نے 50 مائلز اور کور کیے پھر اس نے آگے کسی اور کو دی پھر وہ آگے بھاگا جیسے آپ لوگ ایک گیم بھی کھیلتے نا بچے بھاگتے ہیں پھر وہ اپنے ہاتھ میں کچھ لیا ہوتا ہے کسی کو دیتے ہیں پھر آگے وہ بھاگتا ہے پھر وہ آگے کسی اور کو دیتا ہے तो पैगंबर इस तरह से आए हर जमाने में, मैसेज एक ही था, वो मेल एक ही है, वो मैसेज अल्लाह की तरफ से था, वो आगे 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 वही मैसेज चलता गया। हाँ ये अलग बात है, शरीयतें, शरीयत के बाद अहकामात डिफरेंट आए डिफरेंट जमानों में उनकी जरूरत के मुताबिक। जैसे एक एग्जाम्पल से देखें कि आदम अलैहिस्सलाम के वक्त में बहन भाई का निकाह जायज था, एक ही माँ बाप थे, उनकी औलाद वो पैदा हुई, कोई इंसान तो था ही नहीं, लेकिन उसके बाद तो नहीं जायज रहा। तो इस तरह से हर एक जमाने वक्त के लिहाज से अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ अहकामात उनको दिए, लेकिन जो मेन बेसिक मैसेज था ना वो सेम है सबका। इसीलिए यहाँ पे उन्होंने भी यही फरमाया कि हमारे बच्चों, हमारे बेटों, देखो अल्लाह ने तुम्हारे लिए चूज किया अद्दीन को, इस्लाम को। और अल्लाह ताला ने सूरह आले इमरान में फरमाया वमन यबतगी गैर अल इस्लाम दीना फलन युक्बल मिन, जो भी इस्लाम के सिवा कोई दीन लेके आया ना उससे वो कबूल नहीं किया जाएगा। इससे ये गलत फहमी भी दूर हो गई, जो लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं किसी भी मजहब से हो जाओ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस अच्छे होना चाहिए आपको, बस लोगों के साथ अच्छे होना चाहिए, बहुत नाइस होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, वो काफी है, बाकी आप चाहे शिर्क करें, चाहे जो मर्जी करें, कुफर करें, उससे नहीं कोई फर्क पड़ता। नहीं, अल्लाह ताला ने इस्लाम के अलावा कोई दीन कबूल करना ही नहीं है। और इन अंबिया ने भी सोचे उस वक्त भी मैसेज यही था कि देखो इसी दीन के ऊपर रहना और इसी पे तुम्हारी मौत है। तो इससे हमें यह भी पता चलता है कि वो अपने बच्चों के दीन के बारे में किस कदर कंसर्न थे। जैसे कोई आप देखें कि मालदार बंदा है, वो किस चीज की वसीयत करता है माल के बारे में। किसी बंदे के पास और कोई खजाना है तो वो मरते वक्त खजाने के बारे में वसीयत करेगा। और ये भी यहां पे पता चल रहा है, वसवास से पता चल रहा है कि मरते वक्त हो सकता है उन्होंने ये वसीयत की हो। लेकिन एक बात और बहुत गहरी है इसमें, वसवास जो है ना, जिन्होंने ग्रामर पढ़ी है तो मैंने आपको खास तौर पर अभी बताया ना, तौसीयतन बाबे तफ़ईल से है ये। और बाबे तफ़ईल में क्या होता है, मुबालगा होता है, बहुत ज्यादा का माना और मुसलसल का माना। यानी इब्राहिम और याकूब अलैहिस्सलाम अपने बच्चों को मुसलसल ये ताकीद करते रहे, मुसलसल यही बात कहते रहे, समझ आई, कि बेटो अल्लाह ने तुम्हारे लिए इसको चुन लिया। इसका मतलब है कि अब तुम अपने लिए खुद कोई दीन चूज नहीं कर सकते, अब तुम्हारा तुम्हें इसी दीन के ऊपर रहना है। और जब अल्लाह ताला खुद कोई चीज चुन लेता है तो फिर आप मुझे बताएं उसका सबसे कम दर्जे का हक ये है कि फिर हाँ उस दीन के चूज किए जाने पे अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए कि अल्लाह तूने हमारे लिए ये चूज किया। और उसकी उसका शौक रखा जाए, उस दीन की हिर्स रखी जाए। ऐसे नहीं है कि भाई फिर छोड़ छाड़ के उसके बाद उस दिन को कुछ और अपना के बैठ जाए, नहीं, फिर तो ये नाशुक्री होगी कि ये अल्लाह ताला ने खुद दिया है ये दीन इस्लाम। जैसे हजरत लुकमान ने भी अपने बेटे को मरने से पहले वसीयत की थी ना, या बुनैया ला तुशरिक बिल्ला, मेरे बेटे अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना। तो ये भी यही कह रहे हैं कि दीन के साथ अटैच्ड रहना, इसी को पकड़े रहना। तो हमें ये मालूम हुआ कि इतने जमानों पहले भी जो नबी आए थे ना, उनका भी दीन इस्लाम ही था, वो भी तौहीद पे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तमाम अंबिया का दीन एक था, शरीयतें फर्क फर्क थी, समझ आ गई बात। और ये बहुत सोचने की बात है हमारे लिए, इसके अंदर बहुत ही बड़ा लेसन है कि वो कह रहे हैं फला तमूतुन्ना इल्ला वअंतुम मुस्लिमून, अपने बच्चों को दुनिया से जाते हुए भी कह रहे हैं कि बच्चों इस्लाम की हालत में ही तुम्हें मौत आनी चाहिए। हम तो कभी ये बात ही नहीं मुंह से, अव्वल तो इसको इतना ही बुरा समझते हैं कि मौत की कभी बात अपनी औलाद में से किसी के लिए की जाए। ठीक है, ऐसे नहीं है कि वो आप और किसी उसमें सेंस में नहीं, लेकिन इस बात पे देखें पैगंबरों का भी ये तरीका था कि वो अपने बच्चों को कैसे नसीहत कर रहे हैं कि दुनिया से जब उठने लगो तो तब तुम मुसलमान होना चाहिए तुम्हें। यानी दीन के रास्ते में कितनी मुसीबतें आए, जो मर्जी तुम्हें बर्दाश्त करना पड़े, इस दीन को ना छोड़ना, तभी तो मुसलमान पे मौत आएगी ना। तो इसमें कोई इसका मतलब मजायका नहीं है, कोई हर्ज नहीं है अगर आप अपने बच्चों को इस तरह से नसीहत करें कि देखो तुम क्यामत के दिन मुझे मिलना तो मुसलमान हालत में तुम्हें होना चाहिए। खास तौर पे हम जिन मुल्कों में रहते हैं और हर तरफ शिर्क और कुफर इसके अंधेरे हैं, वहां पे तो बार बार बच्चों को ये ताकीद करनी चाहिए, अपनी नस्लों तक के लिए दुआएं करनी चाहिए कि अल्लाह ईमान पे उनको पैदा करना और ईमान पे उनका खात्मा हो। तो देखें, अब जाहिर सी बात है कि वो इस्लाम के ऊपर रहेंगे तो फिर ही मौत भी इस्लाम पे आएगी ना। तो इसका मतलब है कि पूरी जिंदगी इस्लाम पे ही गुजारना। अच्छा, अब इसके अंदर एक और बात है, और वो बात ये है कि मुस्लिम का मतलब फरमा बरदारी भी तो है ना। तो मुसलमान तो वो थे ही, जाहिर है इस्लाम पे ही थे, फिर ये कौन सा मुसलमान होना है जिसको वो कह रहे हैं कि इस हाल में कि तुम मुस्लिम हो यानी तुम फरमा बरदार हो। तो ये दूसरा माना आप ये भी इस तरह से लिखें कि तुम्हें मौत फरमा बरदारी की हालत में ही आनी चाहिए। किसको मौत फरमा बरदारी की हालत में आ सकती है बताएं? जो सारी जिंदगी अल्लाह का फरमा बरदार रहा तो उसको ही मौत आएगी ना इस हालत में। अब आप ये देखें, मौत का तो कोई वक्त नहीं पता। अब जो कोई हमारे जैसे आधे तीतर आधे बटेर हैं, कभी फरमा बरदारी कभी नाफरमानी कभी कुछ मिले जुले मिक्स हमारे आमाल हैं, तो जब मौत आए तो कोई पता नहीं है कि किस हालत में आए। क्या उस वक्त हम अल्लाह की फरमा बरदारी में होंगे या अल्लाह माफ करे उसकी नाफरमानी में? देखिए ना, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह की फरमा बरदारी की हालत में मौत आए तो क्या करना पड़ेगा? एक एक लम्हा जिंदगी का अल्लाह की फरमा बरदारी में गुजारना पड़ेगा ताकि जब मौत का वक्त आए, फिर ही तो प्रोबेबिलिटी है ना, फिर तो 100% जब मौत आएगी तो जाहिर है फरमा बरदारी में ही आएगी। लेकिन अगर इंसान ऐसी जिंदगी नहीं गुजारता, और मिसाल के तौर पे कोई इंसान किसी नाच गाने की महफिल में है, ठीक है, कि सोचता है मैं थोड़े चंद घंटे के लिए वहां पे चली जाती हूँ, खा पी के आ जाऊंगी, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ी देर की तो बात है, एक शाम की तो बात है, या एक सिनेमा में जाके बैठी हुई है। अब मुझे बताएं कि अगर मौत आ जाती, मौत का तो किसी को भी नहीं पता कि किस वक्त आ जाए, किसी को यकीन है कि कब आनी है? मुझे यकीनी तौर पर यह बात पता है कि कब आनी है मौत, किस टाइम आनी है, किस दिन आनी है। अगर उस वक्त मौत आ गई तो कैसी मौत होगी, फरमा बरदारी में या नाफरमानी में? क्या देखते हुए मौत आएगी, किस मजलिस में बैठे हुए मौत आएगी, सोचें जरा। इसी तरह अगर इंसान ये सोचता है कि मैं ये गुनाह कर लूं, जैसे इंसान के जहन में शैतान इसी तरह के ख्यालात लाता है, कोई बात नहीं, बस एक दफा कर लो, आखिरी दफा कर लो, इसके बाद नहीं करूंगी, बस ये लास्ट टाइम कर लेती हूँ, उसके बाद माफी मांग लूंगी, तौबा कर लूंगी, अल्लाह माफ करने वाला है, तो आपको क्या गारंटी है कि आप उस गुनाह से फारिग भी हो जाएंगे और तौबा का आपको मौका भी मिल जाएगा, टाइम भी मिल जाएगा? क्योंकि आपको तो नहीं पता कब मौत आ जाए। और अगर हमने ये अहद कर लिया कि हमने नहीं मरना मगर फरमा बरदारी की हालत में, फिर तो ये सिर्फ एक तरह से ही पॉसिबल हो सकता है कि दिन हो या रात, जवानी हो या बुढ़ापा, खुशी हो या गम, हर वक्त में हमें अल्लाह का फरमा बरदारी रहना। हमें फिर ये वेट नहीं करना जब बूढ़ी हो जाऊंगी तो फरमा बरदार बन जाऊंगी, ये हालात बस जरा चेंज हो जाए तो फिर मैं अल्लाह की फरमा बरदार बन जाऊंगी, बस आजकल ही असल में मसले मसाइल ऐसे हैं ना, तो इस वजह से मुझे ये करना पड़ रहा है, बस जरा ये मेरे जिंदगी का ये फेज गुजर जाए ना तो फिर मैं फरमा बरदारी इख्तियार कर लूंगी। तो आपको क्या पता कब मौत आनी है?